अब आगे सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। सबको मॉल की तरफ रवाना करने के बाद अरमान सिंघानिया एक बार फिर अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर उसने देखा कि आस्था अभी भी सोई हुई थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद वो नींद में बड़बड़ा रही थी। अरमान ने ये देखकर सोचने लगा कि आखिरकार ये लड़की नींद में क्या बड़बड़ा रही है। ये जानने के लिए अरमान आस्था के थोड़ा सा करीब आ गया था। आस्था के करीब जाकर उसने अपना कान आस्था के होठों के पास रख लिया था। आस्था नींद में सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरमान ये बात साफ सुन पा रहा था, लेकिन उससे आगे आस्था क्या कह रही थी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब अरमान आस्था के और करीब चला गया था। अब आस्था के हल्के से हिलते हुए होठ अरमान के कानों से भी टच हो गए थे। अचानक अरमान को ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई हो। वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हटा। तुरंत आस्था घबराकर उठकर बैठ गई थी। आस्था के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि जो ख्वाब वो देख रही थी उस ख्वाब में वो राजवीर जिंदल की अपने हाथों से जान ले रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये वाली लाइन अरमान सुन नहीं पाया था। आस्था ने अरमान को इस तरह से खुद से दूर देखा और बोली, आपको क्या हो गया है, आप इस तरह से वहां क्या कर रहे हैं? क्योंकि आस्था के होठों ने अरमान के शरीर में काफी ज्यादा कंपकपी सी मचा दी थी, इसलिए उसका हार्मोनल सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया था। आस्था तुरंत खड़ी हुई और अरमान के पास जाकर उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या हुआ अरमान जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? और हमें तो आज शॉपिंग पर जाना था ना, क्या टाइम हुआ है, टाइम तो बताइए। ऐसा बोलकर आस्था को याद आया कि आज सुबह सुबह ही उन्हें शॉपिंग मॉल की ओर रवाना होना था, क्योंकि दादाजी ने उसे परमिशन दी थी कि वो अपने गांव के सभी लोगों के लिए गिफ्ट खरीद सकती थी। इसलिए आस्था फटाफट से टाइम पूछने लगी थी। जब अरमान ने उसे टाइम नहीं बताया, आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को पकड़ा और उसकी घड़ी में टाइम देखते हुए हड़बड़ाकर बोली, ओ शिट, ये क्या हो गया, 10 बज गए हैं और हम 10 बजे तक सोते रहे। अरमान जी क्या करते हैं आप भी ना, हाँ ये क्या किया आपने, सब हम पर गुस्सा करेंगे, स्पेशली नानी माँ, नानी माँ तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान आस्था को देखते रहा, क्योंकि आस्था जब पटर पटर बोलना शुरू करती थी तो वो जल्दी से चुप नहीं होती थी। वेल, अरमान जो आस्था के अनजाने किस्से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अब आस्था के इस तरह से बोलने पर वो उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सूझा और आगे बढ़कर उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया था और आस्था की बोलती अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अरमान उसे किस करने लगा था। आस्था बीच में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती उतना अरमान उसे वाइल्ड किस करता। वेल, जब आस्था सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी तो अरमान ने आस्था को छोड़ा और आस्था घूरते हुए अरमान को बोली, ये सब क्या रहा है अरमान जी, ये आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह, अभी तो हमने टूथब्रश भी नहीं किए हैं। अब जैसे ही आस्था ने बच्चों वाली शक्ल बनाकर ये कहा, अरमान बोला, चलो हम आपको टूथब्रश करा देते हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने बड़े ही रोमांटिक लहजे में आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा बाथरूम में ले आया था। बाथरूम में लाकर उसने खुद अपने हाथों से आस्था को टूथब्रश कराया, साथ ही साथ धीरे धीरे उसे कपड़ों से अलग करने लगा था। अब आस्था थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी थी और दबी हुई आवाज में बोली, हालांकि वो कितने ही बार अरमान के सामने बिना कपड़ों के आ चुकी थी, लेकिन अब इस तरह से अरमान उसे ट्रीट करता था उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। उसे एकदम बच्चों वाली फीलिंग आने लगी थी, इसलिए आस्था अरमान से नजरें चुराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी, हम खुद भी नहा सकते हैं, हम बच्चे थोड़ी ना हैं। तब अरमान ने अपने सीधे हाथ की उंगली को आस्था के होठों पर रखते हुए कहा, श्श, आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नहला रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से मुझे रोकती रही तो हो सकता है कि मैं फिर कुछ करने पर मजबूर हो जाऊं। अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था सीधे सीधे अरमान का मतलब समझ गई थी, क्योंकि इस वक्त अरमान की कंडीशन उसकी आंखों के सामने थी। अरमान खुद भी शर्टलेस था, साथ ही साथ उसने एक लोअर पहन रखा था, लेकिन आस्था अरमान को देखकर इस बात का अंदाज अच्छी तरह से लगा सकती थी कि इस वक्त अरमान क्या चाहता है, इसलिए आस्था चुप हो गई थी, क्योंकि अगर वो अरमान को प्यार करने की इजाजत भी दे देती तो वो उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि अरमान का प्यार नॉर्मल नहीं हुआ करता था, बिस्तर पर वो काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाया करता था, इसलिए आस्था ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तब जल्दी ही आस्था को अच्छे से नहलाने के बाद अरमान खुद भी नहा लिया था। उसने खुद आगे बढ़कर आस्था के लिए बड़ा ही खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन निकाला। आस्था के लिए अरमान बिल्कुल उसकी पसंद के कपड़े चुना करता था, वो उसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाया करता था जहां से आस्था के शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दिया करता था। आस्था वो कपड़े देखकर खुश हो गई थी और उसने अरमान को गले से लगाते हुए कहा, सच में आप बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे पता चला कि हमें आज यही कलर पहनने का मन था और हम चाहते हैं कि आप भी सेम टू सेम इसी कलर का कोई कोट वगैरह पहने। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही प्यार से ये कहा,
अरमान ने बदले में एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और फटाफट से उसने आस्था को कपड़े पहना दिए थे और उसके बालों को अच्छे से कोम करने के बाद उसने आस्था की आंखों में काजल अप्लाई कर दिया था। आस्था के खूबसूरत रेड होठों को किसी भी तरह की लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी। अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था की ओर देखा और फिर फटाफट से खुद भी उसने आस्था के साथ मैचिंग का पर्पल कलर सूट पहना और जल्दी ही दोनों एकदम बेस्ट मेड फॉर ईच अदर बनकर वहां से शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सभी लोग तो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे, लेकिन उनके साथ साथ राघव भी शॉपिंग मॉल पहुंच चुका था, प्रियंका का बॉयफ्रेंड। राघव का इरादा वहां जाकर सबकी खुशियों में ग्रहण लगाने का था। सीधे सीधे तरीके से वो अरमान के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन छुपकर तो वो वार कर ही सकता था, इसलिए वो सीधे सीधे आस्था को अगवा करना चाहता था और उसके बाद अरमान सिंघानिया को घुटनों पर देखना चाहता था। वहीं इस वक्त मॉल में कोई और भी था जो मॉल जाने वाला था। वो कोई और नहीं, वो था राजवीर जिंदल, जिसको अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करनी थी। जी हाँ, राजवीर जिंदल अपनी मरी हुई बीवी के लिए पिछले 20 सालों से हर रोज नए नए सूट खरीदा करता था, नए नए कपड़े उसे पहनाया करता था, उसकी लाश को अच्छी तरह से महंगी महंगी ज्वेलरी पहनाया करता था। तो इसलिए वो आज फिर अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में पहुंच चुका था, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस शॉपिंग मॉल में अरमान सिंघानिया के साथ साथ अविनाश और साथ ही साथ आस्था भी आज उससे मिलने वाली थी। प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर कनेक्ट थी, क्योंकि वो इस तरह से सबके सामने शॉपिंग मॉल में जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। हालांकि वो गांव जाना चाहती थी, ऑलमोस्ट वो गांव जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से अरमान सिंघानिया के आदमी बात बात पर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया करते थे, तो उन्हें डर था प्रियंका कोई गड़बड़ी ना करे जिससे उसकी जान को कोई खतरा हो। और प्रियंका ने जो आस्था की जगह लेने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने प्रियंका को जिंदा छोड़ दिया, यही उनके लिए बड़ी बात थी।
इसीलिए मनोज काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका और बीवी को साफ साफ मना कर दिया था कि अगर उन्होंने गांव जाने के बारे में सोचा भी तो वो उन दोनों को घर से निकाल देंगे और उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो इसीलिए दोनों माँ बेटी घबरा गई थी, लेकिन साथ ही साथ प्रियंका को इस बात की तसल्ली थी कि अगर आज आस्था अगवा हो जाती है उसके बाद तो वो लोग बिल्कुल भी गांव नहीं जा पाएंगे। अपनी माँ सीमा को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया था और उसकी माँ तो यही सोच रही थी कि जिस तरह से उस बुढ़िया ने हमें फ़ोन करके चिढ़ाया है ना, अगर सब लोग नहीं जा पाएंगे तो अच्छा ही होगा, उसकी लाडली आस्था अगवा हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी बेटी पर कोई आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बेटी तो उसके सामने मौजूद थी। तो इसी भरम के बीच वो दोनों माँ बेटी बस इस खुशखबरी का इंतज़ार करने लगी थीं कि कब उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन करके उसे आस्था के अगवा होने की खबर दे। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि नानी माँ और बाकी सब आस्था और अरमान से पहले मॉल पहुँच चुके थे, तो सभी ने वहाँ जाकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। आज रौनक का किसी भी तरह की कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था। रश्मि बार बार अपने लिए कुछ न कुछ खरीद रही थी और रौनक से उसकी पसंद पूछ रही थी, लेकिन रौनक ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो अपना बुझा बुझा सा चेहरा लिए चारों तरफ देख रही थी।